अगली दुआ देखते हैं। मरीद को ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में दर्ज ज़ैल दुआ मांगनी चाहिए। अन आयशत रदी अल्लाह अन्हा कालत समेतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा वहुवा मुस्तनिदुन इलैया यकूलू। आगे से दुआ के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वरहमनी वालहिकनी बिर्रफ़ीक़िल आला। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि बवक्ते वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ टेक लगाए हुए थे। मैंने आपको ये अल्फाज अदा करते हुए सुना, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़े आला यानी अपने साथ मिला दे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। तो किसी बीमारी में भी इंसान को ये नहीं पता होता कि मैंने इससे बचना है कि नहीं बचना। हर बीमारी पे एक इंसान अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखे कि मैं आम हालात की निस्बत मौत के ज़्यादा करीब हूँ। हालांकि ये जहन में रखिएगा कि मौत का बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सोच लेना कि बीमार पहले मर जाएगा, सेहतमंद बाद में मरेंगे, ये दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है। बस दफ़ा कई कई साल के बीमार जिन पे नजरें लगी होती हैं लोगों की, वो अभी तक मौजूद होते हैं दुनिया में और उन्हीं के घर का कोई बिल्कुल सेहतमंद इंसान अचानक चला जाता है। दूसरी बात यह है कि इंसान को अगर महसूस हो, बस दफ़ा डॉक्टर्स बताते हैं, बस दफ़ा इंसान की अपनी हालत उसको बताती है, बस दफ़ा दिल को सूझने भी लगता है। दुआ बड़ी खूबसूरत है, मिलके पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वालहिकनी बिर्रफ़ीक़िल आला। आप देखिए क्या मांग रहे हैं इंसान। आप इमेजिनेशन में लाएं, लास्ट मोमेंट है, सेल ख़त्म हो रही है, लास्ट मोमेंट है, जहाज़ कैच करना है, लास्ट मोमेंट है किसी भी चीज़ के। कितना सेंसिटिव टाइम होता है वो। इंसान का शऊर इस तरह हरकत में आ जाता है कि वही काम जो 5 मिनट में करता है वो काम वो 1 मिनट में करने लगता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे पे रहम कर और मुझे रफ़ीक आला से मिला दे। क्यों? इसलिए कि जब हम पर नज़ा की सख्तियाँ शुरू होती हैं ना, तो हमारे गैब के पर्दे चढ़ जाते हैं, फिर असल गम पता चलता है। फिर उस वक़्त कोई बच्चे की दुआ, उसकी शादी, उसका घर, मेरे कपड़े, कोई एक दुआ भी ऐसे वक्तों पे आती है। ये है रियलिटी। बिल्कुल आंखें यूं पट पट खुल जाती हैं इंसान की कि उसको फिर इस दुनिया से ज़्यादा वो दुनिया दिखने लगती है। जैसे आप देखिए कि कोई ग्लासेस ऐसे लगा ले कि दूर बैठे हुए उसको बिल्कुल करीब दिखे, तो करीब वाले नहीं उसको दिखेंगे ना, वो तो बिल्कुल ब्लरी हो जाएंगे। इसलिए असल मसला ज़िंदगी का यही है कि अल्लाहुम्मा अग़फिरली, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। कभी भी गम, हम, बीमारी, एक्साइटमेंट, ये वो दुनिया में रहते हुए बहुत कुछ हो, तो फौरन उस वक्त खुद को कहा करें कि इस वक्त जितने भी मसाइल और जितने भी मामलात मेरी आंखों में, इन सब से बड़ा मसला क्या है कि अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी। ये बख्शिश और रहम जब साथ साथ आता है ना, तो इसका एक और मानी भी होता है। बख्शिश क्या है कि अल्लाह बस मैं छूट जाऊं, मेरे गुनाह माफ कर दे, यानी ना जन्नत मिले ना जहन्नम मिले, बस आज मुझसे मेरे गुनाहों की बासपुरस ना करना, ठीक है। और वरहमनी में क्या है कि अब रहम करके जन्नत दे दे। ये मैंने बात क्यों कही? अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जहन्नम को कहता है कि तू मेरा इंसाफ है और जन्नत को कहता है तू मेरी रहमत है। मेरी रहमत से कोई दाखिल होगा, हमारे सारे भी गुनाह माफ़ हो जाए ना, इसके बावजूद भी हम इस काबिल नहीं है कि हम जन्नत में जा सकें, फिर नेमतों का हिसाब शुरू हो जाएगा। दो चीज़ें जो हमारे और जन्नत के बीच में आती हैं, एक हमारे गुनाह और एक नेमतें। क़यामत के दिन ये दोनों मामले साथ साथ चलेंगे। हम पहले अपने गुनाहों की माफ़ी भुगतवाएंगे, पहले उसके ऊपर बात होगी, फिर सुम्म लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ये सुम्म बड़ा अहम है, आगे 30वें पारे में आप पढ़ेंगे कि कैसे कि सारे गुनाहों की माफ़ियों के बाद फिर तुमसे अब नेमतों का हिसाब होगा। और रिवायत में आता है सिर्फ एक नेमत आएगी और इंसान की उम्र भर की नेकियां खा जाएगी, सिर्फ एक नेमत। कितने चौड़े होके फिरते हैं हम इस दुनिया में, ना शुक्र ऐसे हैं कि जैसे हमारा हक है। कोई किसी को कर्ज दे के भी शायद कम यकीन से मांगता होगा, हम इससे भी ज्यादा दनदनाते हुए डंके की चोट पे नेमते मांगते हैं। और कम ही नेमतों को घर में आता देखकर, जिंदगी में आता देखकर ये सोचते हैं कि सुम्म लतुस्सलुन्न यौम इज़िन अनिन नईम। फिर आगे देख लें, तीसरा दर्जा भी इसी दुआ में मिल रहा है। पहला इग़फ़िर ली, यानी बस जहन्नुम से बचा दे, अब अरहमनी अब जन्नत भी दे दे, और फिर वल्हिकनी बिर रफ़ीक़िल आला, मुझे रफ़ीक आला से मिला दे। ये है अल्लाह का दीदार, अल्लाह की मुलाकात। आपने फरमाया जब भी मांगो तो अल्लाह से फिरदौस मांगो, क्योंकि अल्लाह का अर्श इसकी छत होगी। रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह बस मुझे अपने करीब घर दे दे, मुझे दुनिया के सोने चांदियों से लिपटे हुए घर क्या करने, बस ऐसा घर दे दे जो मुझे तेरा कुर्ब दे। और वो घर जो अल्लाह का कुर्ब छुड़वा के दुनिया के मसले मसाइल इतने दिमाग में अहम हो जाएं कि कुरान की क्लास में दीन सीखते हुए भी इंसान को उन्हीं घरों की फिक्र है, तो फिर अफसोस की बात है, फिर हमें उन नेमतों के बारे में सोचना चाहिए। अब सब शऊर के साथ इस दुआ को अपने अपने गुनाहों को और खुद को मौत के बिस्तर पे लेटे हुए सोचकर चुपके चुपके ये दुआ मांगे। ऐसी आवाज़ से मांगे कि हमें भी आवाज़ आए, लेकिन आपके जज्बात शामिल होने चाहिए इसमें। اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى। अगली दुआ देखते हैं। किसी मुसीबत या गम, मसलन मौत वगैरह की खबर सुनने पर दर्जा ज़ैल कलिमात कहने मसनून है। अन उम्म सलमत रضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله। ये अल्फाज हैं आगे दुआ के, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। इसके बाद मिलेगा क्या? इल्ला अखलफ अल्लाहु लहू खैरम मिन्हा। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान को मुसीबत पहुँचे और वो ये दुआ मांगे जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। दुआ क्या है? हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सब को इसी की तरफ पलटना है। या अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत के एवज बेहतर अजर दे और इससे बेहतर बदल अता फरमा, तो अल्लाह ताला इसको पहले से बेहतर बदल अता फरमाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। ये कब होगा? जब इंसान का ईमान भी होगा, यकीन भी होगा और शऊर के साथ जब वो ये दुआएं मांगेगा। और उम्मे सलमा इस रिवायत को नकल करती हैं और इन्होंने ये दुआ अपने शौहर अबू सलमा से सीखी थी। उस दौर में शौहर जो बातें सीख के आते थे अल्लाह के नबी सल्लम से, वो आके घर में बीवियों को भी सिखाते थे। और ये दुआ याद की और उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद अबू सलमा का इंतकाल हो गया। और हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं ये दुआ मांगती थी और दिल में सोचती थी कि इतने प्यारे शोहर के बाद अब मुझे इससे अच्छा शोहर कैसे मिलेगा। ये जुमला कब आता है दिल में? जब यकीन होता है कि जो दुआ मांग रही हूँ ये मिलना है। उनको नहीं पता था कि अल्लाह ताला इस दुआ के सबब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत उनको अता करेगा। यकीन कर ले बस, असल चीज़ यकीन है। यकीन के बगैर दवा भी खा लें तो फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला सबको सदमों से महफूज रखे, तकलीफ़ों से, लेकिन इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का, जिसको कहते हैं कि वजीफ़ा बना लें, कि अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लिफली खैरम मिन्हा। फिर ये देखिए कि ये जो लफ्ज़ है ना, मा अमरहुल्लाह, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, वो क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहा है दूसरे पारे में? कौन है साबिरीन? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بہت خوبصورت دعا ہے اور انسان ان دعاؤں کو یاد کر لے، کیونکہ مصیبت جب آتی ہے تو اس وقت کتابیں کاپیاں نہیں ملتی اور مصیبتیں بتا کے نہیں آتی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بڑی سے بڑی مصیبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار چراغ بجھا تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے جس پہ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو مصیبت جو تکلیف ایک ایمان والے کو آتی ہے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی طلب کرے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون جملہ آج ہمارے ہاں عموماً صرف موتوں کے ساتھ رکھ دیا. کوئی فون پہ انا للہ پڑھے تو ہمارا دل دہل جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے کوئی مر تو نہیں گیا، حالانکہ کسی بھی موقع پہ. اور اصل بات یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک حقیقت ہے جس کا ادراک بندے کو زندگی میں ہونا چاہیے. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. جب زندگی اللہ والی ہو جاتی ہے نا، پھر کسی کو موت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ کہنے کے لیے. اور الیہ راجعون کا تصور ہی بندے سے کام کراتا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے مصیبت میں بھی اجر دے. اجر کا لفظ دیکھیے، اجرت، اسی سے ہی ہے، پے دے میری، اللہ میری پے مجھے دے. کیا یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے اب اس کا تو مجھے پے کر. دنیا میں لوگ انشورنس کو ڈھونڈتے ہیں نا کہ وہ ہماری مصیبت کے اوپر ہمیں اجر دے اور ہمیں اس کے اوپر کچھ پے کر دے. اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ تمہیں جو تکلیفوں پہ میں اجر دے سکتا ہوں وہ دوسرے نہیں دے سکتے. تو شعور کے ساتھ ذرا پڑھیے اس دعا کو سب مل کر.
اِنَّ لِلَّهِ